دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 90 سے. پچھلے مضمون میں ہم آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس طرح بھیجا کہ لوگوں کے لیے وہ ایک نصیحت بنے, اور ایسا انداز اختیار کیا جس میں پھر پھر کے بات بیان کی گئی, طرح طرح سے باتیں سمجھائی گئیں, مگر لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں سے اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے نہیں مان کے دیا, انکار ہی کیا, سمجھے ہی نہیں. یعنی بہت کہنے کے باوجود, طرح طرح سے سمجھانے کے باوجود ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. اور ان کا رویہ کیا تھا یہ آگے آ رہا ہے. وقالو, اب یہ انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ مشرکین مکہ نے کہا. اور یہ آیت 90, 91, 92, 93 یہ سب آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں. ایکچولی یہ سارے مطالبات ہیں یہاں سے لے کے یہ ان ساری آیات میں, کہ انہوں نے کیا کیا مطالبات کیے, کیا انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ایمان لانے کے لیے, کہ ہمیں کیا دکھایا جائے ہم تب ایمان لائیں گے. ایمان حالانکہ شرطوں کے ساتھ نہیں باندھا جاتا, ایمان تو دل کے مان جانے کا نام ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر ان کو یہ تھا کہ ہمیں کوئی معجزے ایسے دکھائے جائیں جو کہ بہت ہی سپر نیچرل قسم کی کوئی چیزیں ہمارے سامنے ہوں, کوئی آؤٹ آف دا بلو کوئی چیز ہو جائے تو تب ہم مانیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا مطالبے کرتے تھے, کیا کس قسم کے معجزے وہ مانگتے تھے. وقالو, اور انہوں نے کہا, لن نؤمن لکا, ہم ہرگز نہیں آپ پہ ایمان لائیں گے. جیسے بنی اسرائیل نے بھی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ, ہم تیرے اوپر کبھی نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ تو ہمیں دکھا نہ دے اللہ تعالیٰ کو سامنے. کیا تو ہر ایک قوم نے اپنی اپنی طرح کی چیزیں کہی, یہ بھی کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے جب تک کیا, حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ نکال دے, یعنی تب ہی ہم مانیں گے. آپ کو پتہ ہے عرب کی سرزمین جو تھی وہ خشک تھی, اب انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی کام ہونا چاہیے کوئی زمین سے چشمہ نکل آئے جو یہاں پہ تو کبھی نہیں تھا. او تکون لک جنت من نخیل وعنب, یا پھر ہو جائے ایک باغ تیرے لیے, چلو اور کچھ نہیں تو تیرے لیے ہی کچھ فائدہ ہو جائے, کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا. اس زمانے میں لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ کسی کے پاس باغ ہو, کوئی باغوں کا مالک ہو. تو تیرے لیے ہی کوئی باغ ہو کہ ہم دیکھیں. ایکچولی لوگ نا ان چیزوں سے بہت ہمیشہ اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ کسی کوئی بہت بڑی چیز ہو. مثال کے طور پہ آج کہیں کہ کسی کے جی پرائیویٹ جیٹس چل رہے ہیں, کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, کسی کے پاس ایسی چیز ہے, تو لوگ بڑے خوش ہوں گے, کھڑے کو دیکھنے لگیں گے, اس کو بہت بڑی چیز سمجھیں گے. تو یعنی کہ تو بڑی چیز بن جائے, تیرے پاس باغ وغیرہ ہوں, تو فجر الانہار خلالہ تفجیرا, پھر تو پھاڑ دے دریا یا نہریں ان کے درمیان, اس باغ میں کھجوروں اور انگوروں کے درختوں کے باغ میں نہریں جاری ہو جائیں. او تسقط السماء, یا تو گرائے آسمان کو, کما زعمت علینا کسفن, جیسے کہ تو ہمارے پر دعوے کرتا ہے, بڑے دعوے کرتا ہے نا کہ آسمان گر جائے گا, او کہ یہ لوگوں باز آ جاؤ, یہ نہ ہو کہ آسمان تمہارے پر گر جائے, اللہ کا عذاب آ جائے. کیونکہ سورہ سبا میں آتا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زمین پھٹ جائے یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تمہارے پر گرا دیا جائے. تو جب یہ باتیں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے بجائے مان لینے کے الٹا کیا کہا, انہوں نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی, ایسا کرنا جیسے تو کہتا ہے اس طرح کر کے دکھا دینا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ڈرے نہیں. آپ دیکھیں سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا, امن تو من فی السمائی این یرسل علیکم حاصبا, کہ تمہارے پر پتھروں کی بارش کر دے اللہ تعالیٰ, آسمان سے پتھر برسنے لگے. تو وہ کہتے تھے تم یہ بڑے دعوے کرتے ہو نا تو گرا دو ہمارے پر آسمان. اوتاتی باللہ، یا تو لیا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو بھی قبیلہ ہمارے سامنے، بالکل ہمارے سامنے لائے لا ان کو، تب ہم مانیں گے. او یکون لک بیتن، یا ہو تمہارے لیے ایک گھر، من زخرف، سونے کا گھر ہو، ایک ایسا پہلا سو جو سونے کا بنا ہو، تو ہم دیکھیں تو پھر ہم کہیں کہ واقعی یہ بہت بڑا آدمی ہے. اور ترقف السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان پہ، ولم نؤمنا، لیکن ہم پھر بھی مانیں گے نہیں جب ہم تجھے آسمان پہ دیکھیں گے، تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے، رقیے کا، تیرے چڑھنے کو، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأه. جب وہ تو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ہم نے تب بھی ماننا نہیں ہے کہ تو آسمان پہ ہو کے آیا ہے یا کچھ ہے، لیکن جب تک کہ تو وہاں سے ہمارے لیے کتاب نہ اتار کے لے آئے جس کو ہم پڑھیں، ہم دیکھیں، یہ نہیں ہم مانیں گے کہ تیرے دل کے اوپر وحی اتری ہے، تو کتاب لے کر آ، ہم اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے، پھر ہم مانیں گے. یہ آپ کو اس کے پیچھے کیا سائیکی نظر آ رہی ہے؟ یعنی یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا اصل میں، پھر وہ اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں صرف ہنسی اڑانے کے لیے، صرف تحقیر کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے دین کو، ان اس کے اندر مین میخے نکالنے کے لیے. دیکھا دیکھا، ہم نے تو کہا تھا کچھ بھی نہیں کیا، صرف اعتراضات کرنے کے لیے. ان کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا. پچھلی بھی قوموں نے مطالبات کیے، کیا ہوا؟ کوئی ہدایت تو نہیں پائے. تو یہ ہدایت اس طرح سے نہیں آتی، اسی طرح سے نہیں ملتی کہ لوگ مطالبات کریں اور اس کے بعد کہیں کہ اچھا، ہم نے تو دیکھ لیا تو ہم مان جائیں. نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوا. اس کو ایمان لانا ہوتا ہے، اس کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے. اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ ایک دم سے ایک کوئی سپر نیچرلی چیز ہو. اور شعبدے بازیاں، ایسی چیزیں، سپر نیچرل چیزیں لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، اس لیے کہ ہدایت میں تو انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے. ایسی چیزیں بڑی ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں، مزہ آتا ہے نا اس میں، کہ کوئی جادوئی کرتب ٹائپ، کوئی کرتب دکھائے آپ کو. اور اب آپ کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، نہ کوئی سونے کا محل تھا کہ لوگ جی آگے اکٹھے ہو جائیں اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتے چلتے تھے، کہ کوئی قطار در قطار فرشتے، کوئی باڈی گارڈز ہو، نہ آپ کی سواری کچھ ایسی تھی کہ جو جس کو دیکھ کے لوگ میسمرائز ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو بظاہر آج کی دنیا میں بھی لوگوں کو اٹریکٹو لگتی ہے. تو ان ساری باتوں کا جواب اللہ تعالی نے دیا، کہہ دیجئے اے نبی، آپ ان کو جواب دیں. کیا جواب؟ دیکھیں کتنا مختصر ہے، سوال کتنے سارے، اور جواب سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، کیا یا نہیں؟ نہیں ہوں میں مگر ایک رسول، ایک بشر، ایک انسان ہوں اور ایک رسول. تو جواب میں مختصر بات کی گئی، ان کی ایک ایک بات کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ پاک ہے میرا رب. سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کے عیب، نقص پاک اور ہر قسم کے کمالات کا مجموعہ، یعنی سارے قسم کی اچھی صفات اور کمالات اس میں ہیں، اور ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے. یعنی جتنی باتیں تم کر رہے ہو، جتنے مطالبات تم کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا نہیں کر سکتا. تو ایک کن کہہ کے پورا کر سکتا ہے، مگر اس کا یہ قانون نہیں ہے کہ اس طرح سے کرے کہ جو کوئی کہتا رہے اب یہ کر کے دکھاؤ تو وہ ویسے ہو جائے، وہ کر کے دکھاؤ ویسے ہو جائے. اس طرح تو شروع ہو تو پھر تو ہر کوئی کوئی نہ کوئی مطالبہ لے کے کل کو کھڑا ہو جائے گا، نہیں جی یہ دکھائیں وہ دکھائیں پھر ہم مانیں گے، وہ دکھائیں پھر ہم مانیں گے. اب وہ یاد ہوگا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب کہا تھا کہ ایک مائدہ ہمارے لیے اترے آسمان سے تو ہم اس میں سے کھائیں پئیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی، میں اتارنے کو اتار دوں گا، لیکن جب ایسے کوئی مطالبہ کر کے और फिर उसको कोई मोजा दिखा दिया जाए, वो चीज पूरी हो जाए और वो कौम ईमान ना लाए, तो फिर वो अजाब होगा कि कोई कभी किसी को नहीं हुआ। इसी तरह जब इन्होंने कहा सोने का पहाड़ बन जाए, सब पहाड़ी को सोने का बना दें, ये करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करनी शुरू की थी, लेकिन फरिश्ता आया और उसने यही कहा कि या तो ये सोने का पहाड़ अल्लाह ताला बना देता है, लेकिन फिर अगर कोई ना माना तो फिर वो अजाब होगा कि जो कभी नहीं किसी को हुआ। और यहाँ फिर इनके लिए तौबा का दरवाजा अल्लाह ताला खोल देता है, इनको मोहलत दे देता है, लेकिन मौजजा नहीं फिर दिखाएंगे। जिसने मानना है ऐसे ही माने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी बात को चूज किया था। यहाँ पे भी देखिए, इनकी सारी बातों का जवाब मेरा रब पाक है, मैं तो सिवाय एक इंसान रसूल के और कुछ नहीं, नहीं मैं यानी मैं और कुछ भी नहीं हूं इसके सिवा कि एक इंसान हूं रसूल। मैं कोई सुपरनेचुरल चीजें नहीं कर सकता, मैं कोई जैसे ऐसी जो सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं वो मेरे पास नहीं है। ये ऐसी चीजें थी ना जो सुपरनेचुरल कोई चीज है, और इसमें हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। एक तो ये कि हम अपने अकीदे को सही करें, जो हम समझते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसी पावर्स रखते थे जो इंसानी नहीं है, मगर जो मर्जी इस तरह से चाहे कर लेते, वैसे चाहे कर लेते, ऐसे नहीं है। दूसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे चाहे अल्लाह ताला से जो मर्जी मनवा ले, चलती आपकी ही है, और मोहम्मद का आ, 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 उसमें किसी में शेर में भी कहते हैं ना, अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, अस्तगफिरुल्लाह, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, अस्तगफिरुल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी ताकत है कि अगर अल्लाह पकड़ ले ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया तो कोई भी नहीं छुड़ा सकता। तो शेर को और क्या होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे फरमाते हैं, मैं एक बशर हूँ, एक रसूल, और ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप फरमा दें, वरना अल्लाह ताला फरमाते कि नहीं आप तो बशर तो है ही नहीं है, आपके पास तो इतनी ताकतें हैं लेकिन आपने ये करके नहीं दिखाना, नहीं ए नबी आप कह दें। और जगह जगह कुरान कहता है ये बात कि आप फरमा दें कि मैं एक बशर रसूल। दूसरी हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई शर्म महसूस नहीं की कि हाय अगर मैं कह दूंगा कि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं तो इतनी शर्म की बात है कि तुम ये भी नहीं कर सकते, लोग कहेंगे तुम्हारे अंदर इतनी सी भी ताकत नहीं है, हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं ना, ये कर दो या ये कर दो या ये, बहुत सारी ऑप्शंस दी हैं तो तुम इतना भी नहीं कर सके, कोई एक चीज ही पूरी कर देते। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें कोई आर नहीं थी, कोई शर्म नहीं थी ये कहने में कि मैं एक इंसान हूं लेकिन रसूल हूं, मेरे पास वही आती है, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं। रसूल कौन होता है? भेजा गया। जो रसूल होता है वो भेजा हुआ होता है, वो खुद इख्तियार नहीं रखता किसी चीज का, सारा इख्तियार उसका होता है जिसने भेजा है। तो ये जो हम समझते हैं कि बस रसूल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रसूल हो अल्लाह ताला की तरफ से बना के भेजे गए, तो हम समझते हैं कि पता नहीं जो अल्लाह वाले होते हैं वो जो चाहे कर देते हैं, उनके एक हाथ के इशारे से किसी को औलाद मिल सकती है, किसी को सेहत मिल सकती है, किसी की हाजत पूरी हो सकती है, किसी की मुश्किल आसान हो सकती है। इसीलिए तो हम आज भी जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक पे जाके मांगते हैं, खड़े होकर उनकी तरफ मुंह करके दुआएं मांगते हैं उनके रोजे की तरफ। आप नहीं देना है, आप ही झोली भर दें मेरी, तो इनकी क्यों नहीं झोली भर दी? ये तो यही कह रहे थे ना, हम ईमान ले आते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी हिर्स थी इनके ईमान लाने में। तो ये हमें पता चलता है कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी पावर्स नहीं थी कि ऐसे इख्तियार के जो चाहे करते रहे, आप एक रसूल थे, एक बशर थे। बशर एक इंसान होता है, मगर साथ साथ अल्लाह के पैगंबर थे, जिसकी वजह से दूसरे इंसानों से अबव थे। मगर इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि वो खुद ही कुछ कर सकते तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये भी हम ये समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शर्म नहीं महसूस की ये बताने में। अगर आज हमसे कोई कोई बात पूछता है, कोई सवाल करता है, इनसे सवाल किए गए ना, अगर हमसे आज कोई सवाल करता है तो हमें बड़ी शर्म आती है ये कहने में कि मुझे नहीं पता, पूछ के बता दूंगी, या मैं किसी किसी जगह से पढ़ के बता दूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता, ये कहना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट होता है कि दूसरा कहेगा हाय इसको पता ही नहीं। यहां पे भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सवालात के जवाबात में हाथ उठा दिए कि मैं तो एक बशर हूं, रसूल हूं, ये नहीं फरमाया कि नहीं मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। ठीक है, तो इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं होती अगर कोई आपसे कोई सवाल करे और आपको नहीं आता। इसी तरह हमें ये भी बात समझ आती है यहां से कि किसी का अगर आपको समझ आ जाए ना कि ये बंदा सिर्फ मुझे बातों में उलझाना चाहता है, या ये बंदा सिर्फ मजाक उड़ाना चाहता है, ये इसके लिए सवालात कर रहा है, इसको हिदायत नहीं चाहिए। एक होता है ना, एक सवाल होता है जिसमें वाकई कोई इंसान कुछ सीखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, एक आपको पता चल रहा होता है कि इसका सवाल करना इसके लिए नहीं है, इसका सवाल करना इसलिए ताकि कोई एतराज करे, तो आप कोशिश करेंगे उसके सवाल का जवाब ऐसा ना देंगे पकड़ के बैठ जाएं और उसके एक एक सवाल का जवाब देते रहें। यहां पे आप देखें सवाल इतने और जवाब कितना मुख्तसर, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, कोई तमहीद नहीं है, नहीं नहीं ये वाली नहीं ये वाली, तो पहले कौन सा ऐसे था, ये कौन सा क्या था, अच्छा फिर आसमान अगर गिर गया फिर सोचो तुम्हारे पर क्या होगा, फिर अगर सोने का घर बना तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसे कुछ बात ही नहीं, मुख्तसिर बात, मैं इंसान हूं रसूल हूं, इसके सिवा कुछ नहीं। तो देखिए इस तरह से जवाब होते हैं, आपने उलझना नहीं है ऐसे लोगों के साथ, आपने उनके साथ बहस नहीं शुरू कर देनी, आपने उनके साथ तू तकार नहीं शुरू कर देनी कि टिट फॉर टैट, एक वो बात करें फिर आप बात करें, जब पता चल गया ना कि इन्होंने बात समझने के लिए नहीं ये कर रहे, बल्कि सिर्फ इनका मकसद है एतराजात करना, तो मत उलझे। हर एक सवाल इस काबिल नहीं होता कि उसका जवाब दिया जाए, याद रखिए, जहां ऐसे लोग आ जाए जिनको ये एतराज हो के ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये कैसे है, वो कैसे है, इनका सिर्फ मकसद होता है इस तरह की बातें बनाना। फिर ये आप देखें कि यहां पे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सिर्फ रसूल हूं और बशर हूं, और बशर मानने को आज बहुत से लोग तैयार नहीं, लिहाजा ये मिसकंसेप्शन भी दूर कर लेना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नूर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसे थे कि बस सुपर नेचुरल कोई चीज थे, नहीं बशर थे। ठीक है, ऐसे नहीं था कि आप हर जगह मौजे दिखाते फिरते थे जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। फिर हम ये भी देखें कि इन लोगों के पास सबसे बड़ा मौजा जो था वो कुरान था, मगर उसकी तरफ इनकी तवज्जो नहीं थी, और किस चीज की तरफ तवज्जो थी कि कोई ऐसी कोई चीजें दिखाई जाएं, कोई ऐसी करामात होनी चाहिए, कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए जो जादुई किस्म की हों, उस तरह की होनी चाहिए, कोई करतब टाइप दिखाएं, कोई ऐसा कर दें, कोई ऐसा, कोई जैसे वो जादूगर नहीं कहीं एक जो तरफ से वो रुमाल निकाल लेता है, कभी कुछ करता है, कभी कबूतर निकाल लेता है, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ना, कुरान की तरफ नहीं आते थे, ये सबसे बड़ा मौजा था। लेकिन आज भी आप देखें ज्यादा लोगों की तवज्जो किस तरफ है कि वो इस तरह की कोई बस ऐसी चीजें देखने के ऐसा कुछ हो जाए तो ये मेरा काम हो जाए, ऐसे कर लें तो ये कर लें, कोई कोई ऐसी चीज ना, कोई मुख्तसर सी कुछ ऐसी चीज बता दी जाए इस तरह से ये मेरे सारे काम बन जाए, और कुरान पाक को हिदायत के लिए लेना ये नहीं, इतने इंटरेस्ट इसमें नहीं है, करामात की किताब ही बनाया हुआ ना आज कुरान को, हिदायत की किताब तो नहीं समझा हुआ, इससे कुछ ऐसा हो जाए कि बस दुनिया पलट जाए, काया पलट जाए, कुछ गैब से ही कुछ चीजें होनी शुरू हो जाए, मेरी मसले मेरे हल हो जाए, बस ये हो। पिछले दिनों मुझे कोई खातून मिली तो जब उनको कुरान कुराने पाक की तालीम की दावत दी तो मेरे से पूछने लगी कि आप वजीफे बताती हैं। यानी आप सोचे हमारी साइकी क्या बन गई है कि बस वजीफे हैं, कोई झाड़ फूंक है, कोई ऐसी चीज उग जाए जिससे हमारे ये काम बन जाए तो बस फिर कुरान को हम लेंगे, वरना कुरान को हिदायत के लिए नहीं लेना। और फिर जो आते हैं कुराने पाक की तरफ उनको भी ऐसे लगता है कि बड़ा एहसान झाड़ है कि बस हमने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दी ना, अब तो हमारी जिंदगी में ऐसा जादू हो जाए कि कोई मसला ही ना हो, कोई तकलीफ ही ना हो, कोई परेशानी आए ही ना। और अगर कोई आ जाए तो क्या फायदा फिर हमारा कुरान पढ़ने का, हमारे साथ ये मसला क्यों हो गया। वो आप अल्लाह तआला पे एहसान कर रहे हैं क्या? कुरान पाक इसलिए तो नहीं है कि बस इसके उसे कोई करामात हो जाए, कोई ऐसा जादू हो जाए, कोई इस तरह हो जाए, सब मसले हल हो जाने चाहिए। जो कुरान पढ़ता है उसके ऊपर कोई मसला आना ही नहीं चाहिए कभी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो बड़े मसाइल हुए, फिर क्या कहेंगे, उनसे ज्यादा कौन कुरान पढ़ने वाला था। वो भी कहते थे कोई नहरें निकाल दें, कुछ ऐसे कर दें, कुछ हमारी जिंदगी ही बदल जाए, कोई चश्मे ही जारी हो जाए, यहाँ पे ग्रीनरी हो जाए, सब्ज हो जाए, पहाड़ सोने का बन जाए, ये पहाड़ चलो हम रिच ही हो जाए। यानी वो तीन इसलिए है, जो असल मौजा उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। वमा मना अन्नास अन युमिनू इज जाअहुमुल हुदा, नहीं लोगों को रोका ईमान लाने से जब उनके पास हिदायत आ गई, कुरान आ गया, तो उनको ईमान लाने से कौन सी चीज रोकती थी? अब तो हिदायत आ गई थी, क्या चीज ने उनको रोका? सिर्फ एक चीज ने रोका, इल्ला अन कालू अबाथल्लाहु बशर रसूल, कि उन्होंने कहा कि कैसे अल्लाह ताला ने एक इंसान को रसूल बना के भेज दिया, ये कैसे हो सकता है। और ये हर जमाने के काफिरों का यही प्रॉब्लम रहा है कि पैगंबर इंसान, यानी उनको ये लगता है कि इंसान तो एक हकीर सी चीज है, घटिया मखलूक है, ये पैगंबर कैसे हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने इसको घटिया नहीं बनाया, उसको तमाम मखलूकात से ऊपर बनाया, हत्ता के फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम इंसान को दे दिया, जब फरिश्तों से सजदा करवा दिया इंसान को। लेकिन इंसानों ने खुद इंसानियत को इतना नीचा समझा कि अगर कोई नबी है तो वो इंसान नहीं हो सकता, वो उसको कोई फरिश्ता होना चाहिए था। उनके लिए यही बात इतनी मुश्किल थी हजम करनी कि कैसे हो सकता है रसूल है इंसान, ये तो हमारे जैसा इंसान है, ये रसूल कैसे हो सकता। ये कुरान पाक में ये बात है कि वो कहते थे कि ये कैसा रसूल है जो खाता है पीता है बाजारों में घूमता है, ये कैसा रसूल है, इसको तो नहीं ऐसा होना चाहिए। अब जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है नबी आपसे पहले जितने भी रसूल आए वो सब खाना खाते थे और बाजारों में फिरते थे। ईसा अलैहि सलाम के बारे में लोगों ने कहा खुदा का बेटा है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तो खाते पीते हैं, खाना पीना इंसानियत का इंसान ही खाता पीता है ना, एक अल्लाह ताला की जात है जो खाने पीने से और इन चीजों से पाक है, और वो अपनी जरूरियात के लिए बाजारों में भी जाते थे। अच्छा और तो छोड़े, पैगंबर तो बहुत बहुत बुलंद है, हम तो उनकी पैरों के खाक के बराबर भी नहीं। और इसके बावजूद आपको ये सुन के हैरत होगी कि बाज लोग जैसे मेरे जैसे इंसान जो आम लोग हैं, इनके बारे में भी कोई दीन का काम कर रहा हो ना तो उसके बारे में भी क्या सोचते हैं। इतनी हैरत से किसी ने पूछा आप भी बाजार जाती हैं, मॉल जाती हैं आप? मैंने ऐसे लगता है कि मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। और किसी ने हैरानगी से कहा कि अच्छा आप खाना पकाती हैं, शायद हमारे यहाँ आज भी यही कॉन्सेप्ट है, जो दीन का काम करने वाले हैं इनके शायद कोई मुरीद होते होंगे जो इनकी टांगे दबाते होंगे और इनका खाना पकाते होंगे, या फिर ये इनके लिए कोई मनोसलवा उतरता होगा, या फिर शायद खाते पीते ही नहीं है, ऐसे ही भूखे ही रहते हैं, खाए भी नहीं। अब क्या बेचारे अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, इनको तो खाना पीना ही नहीं चाहिए, या फरिश्ते आगे इनके काम करते होंगे, या बाजार जाना ये तो इनकी शान के खिलाफ है, इनका क्या काम है बाजार जाने का। जब मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बता देते हैं ना, वो भी इंसान है, उनकी भी वैसी जरूरियात है जो कोई दीन का काम करे, या कोई पैगंबर तक है तो वो भी इंसान है, खाएंगे पिएंगे भी, जिएंगे कैसे वरना। बाजार भी जाएंगे, उनकी कोई जरूरियात भी होंगी। क्यों हम ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते? इसीलिए तो फिर हम सोचते हैं कि जो दीन पे अमल करना है या दीन का काम करना है या दीन से जुड़ना है ना, वो कोई खास किस्म के कोई एलियन टाइप लोग होंगे जिनके हो है, उनको ऐसा बना लेते हैं कि कोई वो सुपर नेचुरली कोई चीज है। और आम हमारे जैसे लोग जी, हम कैसे दीन के ऊपर चलते? तो वो तो वो बड़े पहुंचे हुए लोग, पता नहीं किधर उनको पहुंचा देते हैं, वो खाने पीने से ही पाक होते। तो इन चीजों को जहन से निकालना चाहिए। हाँ, सब इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ये दीन नाजिल फरमाया। वो भी इंसान है जो दीन का कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो भी इंसान है जो पैगंबर थे। तो हम अपने आप को एक्सक्लूड ना करें कि हम तो इस दीन पे चल ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो ऐसे बन ही नहीं सकते। क्यों? वो जो दीन का काम कर रहा है वो भी तो इंसान ही है, आप क्यों नहीं वैसे बन सकते? और वो कोई आपसे ज्यादा खास तो नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी खसूसियात तो नहीं है। और ये दीन प्रैक्टिकल दीन है। तो इस तरह की बातें, ऐसी सोच पाई जाना कि ऐसे कुछ कोई और ही अलग मखलूक होंगे, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह आज ये भी सोच पाई जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे, बल्कि वो नूरुम मिन नूरिल्लाह थे। आप देख लें ये जो दुरूदे तंजीना या क्या है, उसके अंदर है ना ये कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, कि वो नूर थे अल्लाह के नूर में से। और हर जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप कह दें कि आप बशर रसूल हैं। तो अब आप देखिए ना कि ये चीजें फिर दुरुस्त नहीं है, इस तरह के कॉन्सेप्ट रखना। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर फरमाता है, और आपने दरूद में अपनी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बुलंद करने के लिए उनको नूर कह दिया। आपकी बात सच्ची है कि अल्लाह की बात सच्ची है? फिर बड़े शौक शौक से वो वाले दरूद पढ़ते हैं कि नहीं जी ये बहुत अच्छा दुरूद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दें वो उसमें नहीं आपको खासियत लगती। और वो जो लोगों ने बता दिए बना बना के दुरूद, जिसमें कोई शिर्क है कि कोई ऐसी बात है, वो सही लगते हैं। तो जब हम ऐसे ऐसी बातें करते हैं, तो असल में हम यह प्रूव करना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं थे। इसी तरह ये कहते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो साया ही नहीं था जी। तो क्या आप बताना चाह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे? क्योंकि इंसानों का तो साया होता है। तो ये सोच रुकावट बनी थी मुशरिकीन के ईमान लाने में। और जब उन्होंने समझा कि इंसान एक काबिले इज्जत चीज नहीं है, बल्कि फरिश्ता काबिले इज्जत है, तो इंसान को रसूल नहीं होना चाहिए, फरिश्ते को रसूल होना चाहिए। और आप नोट करें, इबलीस का भी तो यही काम था ना, उसने भी तो इंसान को घटिया समझा, काबिले इज्जत नहीं समझा था, तभी कहा था मैं क्यों उसको सजदा करूं। यही सोच अगर हमारी हो जाएगी तो ये इबलीस ही सोच है। अच्छा ये भी नोट करें कि वो कहते थे बशर है, इंसान है तो रसूल नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं रसूल है तो इंसान नहीं हो सकता। समझ आई बात? वो कहते थे इंसान है रसूल नहीं हो सकता, हम कहते हैं रसूल है वो इंसान तो हो ही नहीं सकता। तो इस बहस को, इस चीज को, जो कुरान पाक को आप स्टडी करने लगते हैं, तो इस चीज को क्लियर हो जाना चाहिए माइंड्स में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे या बशर थे। ये बड़ी बहस करते हैं लोग। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल लौ काना फिल अर्दी मलाइका तुम यमशूना मुतमईनीना, अगर इस जमीन के ऊपर फरिश्ते बसते होते, यहाँ पे चलते फिरते होते इत्मीनान के साथ। इत्मीनान के साथ मतलब क्या कि यहाँ पे रहते बसते होते, यहाँ पे वो रहाइश इख्तियार करी होती उन्होंने, फरिश्ते ही यहाँ की आबादी होते, तो लनज़लना अलैहिम मिनस्समाई मलक रसूला, तो हम आसान बात ही अल्लाह ताला आसमान से मलक रसूल बना के भेज देता। अभी बशर रसूल इसलिए भेजा कि सारे बशर ही यहाँ जमीन पे बसते, अगर मलक होते जमीन मलाइका होते जमीन के ऊपर, यहीं पे वो रहते फिरते चलते होते, तो फिर उनको अल्लाह ताला भेज देता। समझ आई बात? अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। फरिश्ते तो वैसे भी जमीन पे आते जाते रहते हैं, लेकिन पैगंबर फरिश्ता बना के क्यों नहीं भेजा? वो क्यों नहीं पैगाम देने आया? इसलिए कि अगर फरिश्ता आता, हम सूरह अनआम में भी पढ़ते हैं, तो वो भी इंसानी शक्ल में ही आता ना, फरिश्ते की असल शक्ल तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, इंसानी शक्ल में आता, फिर लोगों ने कहना था ना ये तो हमें तो हम तो कंफ्यूज हो गए, ये तो इंसान ही है। और अल्लाह ताला की बड़ी हिकमतें हैं एक बशर को रसूल बना के भेजने में, वरना मुश्किल नहीं था अल्लाह के लिए कि फरिश्ता आकर पैगाम देता, लेकिन बशर को रसूल बना के भेजा इसलिए कि ये पैगाम जो अल्लाह ने पहुंचाना था, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपको दे देना है, उस बशर रसूल ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है, रोजा रख के दिखाना है और खाना खा के भी दिखाना है, रात को सो के दिखाना है, सो के नींद तोड़ के जाग के भी दिखाना है, दुखों के ऊपर आंसू बहाने भी हैं और सबर करके भी दिखाना है, खुशी में खुशी मना के भी दिखाना है और हद के अंदर रह के भी दिखाना है, रिश्तों को निभा के भी दिखाना है, रिश्तों के ऊपर सबर भी करके दिखाना है, रिश्तों की तरफ से जब तकलीफ आए दुख आए तो उसके बावजूद रिश्तों को मिला के दिखाना है, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करके दिखानी है और दुश्मनी करके दिखानी है। फरिश्ता कैसे ये कर सकता था, उसकी ना तो ये रिश्तेदारियां यहाँ पे थी, ना उसको कोई नींद आती है, ना वो खाता पीता है, वो कैसे करके दिखाता ये सब कुछ। फिर लोगों ने कहना था जी वो तो फरिश्ता है इसलिए करता है, हम तो बेचारे इंसान, हम कैसे कर सकते, हमारी कहाँ ताकत। तो अल्लाह ताला ने लोगों की इसलाह चाहिए, इसलिए इंसान को फरिश्ता बना के भेज, इंसान को रसूल बना के भेजा, ताकि लोगों का तज़किया हो सके, उनकी जिंदगियां बदल सके। वरना अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ता होते, इंसान ना होते, तो हमने फिर ये भी कह देना था लो जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पता हमारे क्या हालात हैं, वो कौन सा इंसान थे, वो कौन सा वैसे महसूस कर सकते थे, उनकी कौन सी औलाद थी, क्योंकि फरिश्तों की तो औलाद भी नहीं होती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद का गम भी सह के दिखाया, भूख बर्दाश्त करके दिखाई, जंग में जख्मी होके दिखाया, ये क्या क्या आपने करना है जब आपके साथ ऐसा सब कुछ हो। रिश्तेदारों के ऊपर हम बहुत कहते हैं कि वो हमें तंग करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हम क्या करें, तो उन्होंने उनसे ज्यादा किसने रिश्तेदारों से मुखालफतें सही होंगी, उनसे ज्यादा किसने रिश्तेदारों से गम सहा होगा, उनसे ज्यादा किसने औलाद का गम सहा होगा, इनकी सारी औलाद ही उनकी जिंदगी में फौत हो गई सिवाय हजरत फातिमा के, जिनका कोई बेटा नहीं बचा, तो उनसे ज्यादा कौन दीन की खातिर कुर्बानियां देने वाला होगा, दीन की खातिर बातें सुनने वाला होगा, कौन सी चीज में नहीं हमें नमूना मिलता। आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्या पता, अगर उन्होंने सही तो उनको क्या पता, अब इसीलिए कह देते ना वो तो बस नहीं जी उनकी तो बात ही ना करें, क्यों नहीं उनकी बात करें, अल्लाह ताला ने उनको एग्जाम्पल बनाया हमारे लिए, हम उनसे ही सीखेंगे और किससे सीखेंगे, क्या उनको दुख नहीं होता था, क्या वो कोई ऐसे सुपर नेचुरल बीइंग थे कि उनका दिल नहीं था, सब चीजें उनको भी महसूस होती थी, क्या भूख उनको नहीं लगती थी, लगती थी, या तो हम कहें ना कि उनको तो लगती ही नहीं थी तो इसलिए उनको क्या पता, भूख तो हमें ही लगती है, प्यास उनको नहीं लगती थी, परेशान वो नहीं होते थे क्या, हाँ इंसान थे, सब चीजें उनके साथ भी थी, मगर रिएक्शंस डिफरेंट थे, और यही तो हमने सीखना है कि इन चीजों को कोप कैसे करना है जब हमारी जिंदगी में आए, यही तो हमने उनसे सीखना है कि अपने आप को कैसे संभालना है जब हमारे ऊपर ये हालात आए, उन्हीं से तो हमने सीखना है कि चीजों को बर्दाश्त कैसे करना है, उन्हीं से तो हमने सबर सीखना है, उन्हीं से तो हमने शुक्र सीखना है, उन्हीं से तो हमने इबादत सीखनी, सब चीजें उनसे सीखनी है, तो ये कह के एकदम रिजेक्ट ना कर दे, कर नहीं नहीं ना उनकी तो बात छोड़ो ही नहीं, बेशक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते लेकिन हमने सीखना उन्हीं से है, उन्होंने 100% किया तो हम उसका 10% भी कर ले, बड़ी बात है, लेकिन देखना उन्हीं की तरफ है, बिल्कुल इस चीज को नजर से हटाना दिया करें कि नहीं जो उनसे हमने क्या सीखना, वो तो रसूल थे उनसे हमने क्या सीखना, ना उन्हीं से सीखना ये कहें। इसीलिए अल्लाह ताला ने बशर को रसूल बना के भेजा। पूरी पूरी उनकी जिंदगी आप देख लेना, इतनी जबरदस्त लाइफ है, इंसान ना हैरान हो जाता है। और इसी में तो कमाल है कि एक बशर होके ऐसा होना, यही तो कमाल है। नूर होके ऐसा होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। वो फरिश्तों में तो बर्दाश्त ही बर्दाश्त है, उनको कौन सा भूख लगती है, उनको कौन सा कोई ऐसे होता है कि दुख से वो बैठ जाए, उनके कौन से बच्चे हैं, उनके कौन से रिश्तेदार हैं, उनके कौन सी बातें सुनने की बात है, ऐसी चीजें उनके साथ नहीं है। यही तो कमाल है कि इनके अंदर वो सारी फीलिंग्स थी जो हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी वो कमाल की शख्सियत है। ये चीज उनको एक्सलेंस के लेवल पे पहुंचाती है, ठीक है। और हमने उनको बशर से ही हटा दिया तो फिर तो मामला ही खत्म हो गया ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर कौन सी ऐसी बड़ी बात रह गई, फिर तो कोई कारनामा रह ही नहीं गया। तो फरिश्ते भी हर वक्त ही इबादत करते, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी भी करते, उनका ये कमाल नहीं समझा जाता। कमाल इंसान का समझा जाता है जब वो उस लेवल पे पहुंचता है, क्योंकि वो इंसान है, उसका मुश्किल है। फरिश्तों का क्या, वो तो मैकेनिकल है, उन्होंने तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही बनाया, उनके तो ताकत थोड़ी है कोई नाफरमानी की। लिहाजा इस बात को समझे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कम कर देते हैं जब हम कहते हैं कि वो तो नूर ही थे। तो बस ठीक है, फिर नूर थे तो फिर तो उनको ऐसे करना ही चाहिए था। आप उनका मकाम समझें कि वो बशर थे, और बशर में सब इंसानों से बुलंद होके उन्होंने दिखाया कैसे उन्होंने एक परफेक्शन का लेवल अटेन किया। ये है कमाल की बात।